मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं किया और वह जो है अपने असल पर में जो हमें सब है जो उसी में जो हमें जो है हमेशा लगा हुआ है जिसमें मेरा चित्त जो चीज भौतिक भौतिक चीजों को इच्छा पूर्ति में लगा है उसी को मैं पूर्ण करने में लगा रहा हूँ। दुआ पाए तत्पर निवास मैं कभी भी जो है भक्तों के चरणों वैष्णव चरणों की कभी मेरी जो है लालसा जो है उत्पन्न नहीं कभी कभी उत्पन्न नहीं किया नरोत्तम दास का एक है कितनी लालसा है नरोत्तम दास का मुझे कह रहे कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ सुन रहा हूँ सुन के भी जो है मैं बड़ा भयभीत हो गया संसार के जो कष्टों को सुनकर मैं बड़ा भयभीत हो गया और इसके बाद क्या होगा हमारा पुनर्जन्म क्या होगा ये सब सुनकर जो है मैं भयभीत हो गया। तो हे प्रभु हे वैष्णव ठाकुर आप कृपा करके अपने पास जो पास है जो रस्सी है उससे मुझे मेरे पर फेंकिए और मुझे समुद्र से बाहर निकालिए। इस प्रकार वत्सल ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं और श्री वत्सल ठाकुर महाशय की उनका संक्षिप्त जीवन चरित्र क्योंकि वैष्णव वैष्णव का जीवन चरित्र हमें जितने किया था भगवान के भक्त बन पाए या ना बन पाए कुछ जो है हो सकता है अपने को भगवान के भक्त मान लेते लेकिन डाउट है उधार हुआ कि नहीं होगा जब तक भक्तों के चरण में हमारा प्रकार राग प्रेम उत्पन्न नहीं होगा इसीलिए भक्तों के जीवन के चरित्र में जानना चाहिए उनको प्रसन्न करने में पूर्ण प्रयास करना चाहिए और भक्त प्रसन्न होंगे तो भगवान तो ऐसे ले जाएंगे भगवान तो भक्तों के अधीन है। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का परिचय इस प्रकार है श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला संग्रह करने के समय संभवत 1531-32 में पद्मावती के किनारे स्थित क्षेत्रीय गांव में राजा कृष्णानंद दत्त के घर माघ पूर्णिमा के दिन शाम के समय हुआ आज बात होती है शाम को श्री जी उनका आविर्भाव हुआ उनके माता का नाम श्री नारायण देवी श्री नित्यानंद श्री नित्यानंद अपने ग्रंथ प्रेम ज्ञान वर्णन करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते से बंगाल में कलाई चंदना गांव में एक दिन कीर्तन नृत्य करते करते खेतरी की ओर देखकर नरोत्तम नरोत्तम नाम लेकर बार बार बुलाने लगे भावावेश में आकर श्री चैतन्य महाप्रभु अस्थिर हो गए उस समय नितंत प्रभु हरिदास भक्तेश्वर आदि पार्षद महाप्रभु की अवस्था देखकर चकित हो गए और उन्होंने सोचा कि जल्दी श्री चैतन्य देव के कोई प्रेम पात्र नरोत्तम नाम धारण करके अभिभूत होंगे और कीर्तन रस का प्रचार करेंगे आगे चलकर स्वयं गौरव देव ने नित्यानंद से कहा पद्मावती नदी के किनारे खेतुरी स्थित खेतुरी गांव में नरोत्तम जल्दी प्रकट होंगे और हरिनाम संकीर्तन जो मेरा जीवन है उसका प्रचार हेतु मैं स्वयं उन्हें शक्ति प्रदान कराऊंगा शक्ति प्रदान बनाऊंगा मेरी कृपा से मैं सदैव कीर्तन रस में मग्न रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कुतुबपुर जाकर पद्मावती में स्नान किया और पद्मावती से कहा प्रभु कहे पद्मावती जय प्रे मनोरेश नरोत्तम नाम पात्र प्रेमदार जय शिष्यगण श्री जगन महाप्रभु ने कहा हे पद्मावती या प्रेम को धारण करो और नरोत्तम नरोत्तम जो इस प्रेम का एकमात्र पात्र है उन्हें आप प्रदान करो। उस समय पद्मावती कहती है पद्मावती बोले प्रभु करे निवेदन केवल जानी वो आड़ो केवल जानी वो काड़ो नाम नरोत्तम जहाँ पर से तुम्हें अधिक उछलिब से ही नरोत्तम प्रेम तार तुम्हें दिव। पद्मावती ने प्रभु से निवेदन किया प्रभु मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन नरोत्तम नरोत्तम है यात्रा भी प्रदान करना जिस दिन दर्शन तो थी और प्रथम की नदी में आए थे जैसे नदी में तो बाढ़ तो आते रहता है जो उसका जल का प्रभाव बढ़ते रहता लेकिन जिस दिन दर्शन थी गए उस दिन बहुत बड़ा जो है बाढ़ आ गया कब से जो है ठाकुर जैसे ही नदी में प्रवेश कर रहे वो नदी जो है तो उछलते हुए तो उनके पास आ गए जब भगवती समझते यही जो है नरोत्तम दास ठाकुर श्री नरोत्तम दास दिन दिन बड़े होने लगे उनके पिता ने फिर अन्न प्राशन उत्सव आरंभ किया उनके मुंह में अन्न देने लगे तो उन्होंने अन्न ग्रहण करना मना कर दिया वह उपस्थित सारे लोग चिंतित होने लगे लोगों ने उस समय एक ज्योतिष लेकिन उस समय एक ज्योतिष ने बताया कि यदि कृष्ण प्रसाद देंगे तो यह बालक तुरंत ग्रहण करेगा उसी समय पिता कृष्ण प्रसाद लाए तो नरोत्तम ने बड़े ही हर्षित होकर उसे ग्रहण किया श्री नरोत्तम दास ठाकुर बचपन से ही अति रूपशाली तीक्ष्ण बुद्धि युक्त एवं सुमधुर वाणी से सबको आकर्षित करते थे उनके 5 साल की आयु में
लोकन गोस्वामी के पहुंचते के पूर्व ही
नवरत्न की या सेवा करते हुए फल उठाते रहते हैं। लोकन गोस्वामी ने सोचा कि इस प्रकार की सेवा कौन करता है, वृंदावन वासियों से इस प्रकार की सेवा करना, सेवा स्वीकार करना अपराध दंडनीय है। वे रात्रि में उस स्थान की ओर चल पड़े थे, उस स्थान की ओर चल पड़े तो देखा कि नरोत्तम दास ने साधु के वो स्थान साफ कर रहा है। तो लोग आश्चर्य हो गए, ये सब कार्य कौन कर रहा है, ब्रजवासी धामवासी ये लोग अगर मुझे कोई संत समझे करेंगे तो उस पर क्या बात होगा। तो देखने के लिए क्या किए, रात को हुआ, रात को आके देखने छुपके से आके देख रहे थे कि ये कौन करता है। तो लोकल गोस्वामी को देखकर उन्होंने दंडवत किया। इस प्रकार के निज सेवा से लोकल गोस्वामी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने नरोत्तम से यह कहा कि तुम यमुना स्नान करके आओ, वे वापस अपने गुरुदेव के पास आए। तब से लोकल गोस्वामी ने उन्हें दीक्षित किया। इस प्रकार उन्होंने गुरु पादाश्रय की प्राप्ति की। उसके बाद से नरोत्तम ठाकुर ने अपने गुरुदेव के निकट भागवतम उनके शास्त्र अध्याय अज्ञान भक्ति को देखकर ठाकुर महाशय उपाधि प्रदान की। उन्होंने गोस्वामी ग्रंथ की बांग्लादेश में ले जाने में सहायता की। तत्पश्चात जिलाश्रय गौर मदन की लीलास्थली का दर्शन करके खेतुरी पहुंचे। वहां उन्होंने अद्भुत संगीत रस का प्रचार किया और उनके अनेक लोगों को शिष्य रूप में स्वीकार किया। जब वृंदावन से लौटे तो श्री लोकनाथ गोस्वामी ने उन्हें आदेश दिया कि गौर देश में श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन का प्रचार करो, श्री विद्रोह की सेवा तो वैष्णव सेवा करो। उन्होंने पहली बार गौर पूजा उत्सव का आयोजन किया और सारे गौरिया वैष्णव को निमंत्रण किया। विशेषता उन्होंने जानवी देवी विशेषता उसमें श्री जानवी देवी ने भाग लिया। बड़े धूमधाम से यह उत्सव मनाया उन्होंने मनाया। उन्होंने वहां से विद्रोह की स्थापना की। श्री गौरांग ने श्री बल्लभ का श्री ब्रजमोहन श्री कृष्ण श्री राधाकांत श्री राधाकांत स्थापना किया। उस उत्सव में उन्होंने महासंकीर्तन किया। जब चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आविर्भूत हुए और नृत्य करने लगे, सभी भक्तगण महाप्रेम सागर में हो गए। इस प्रकार से ठाकुर ने गौरांग देव के उत्सव को संपन्न किया। इसके विस्तार से वर्णन प्रेम विलास ग्रंथ में प्राप्त होता है। खेतुरी ग्राम से आने के बाद श्री ठाकुर महाशय ने गौरांग और राधा कृष्ण के प्रति यह पढ़ने लगे। वे निरंतर रसिक भक्तों के साथ कृष्ण कथा करते और बार बार खास श्री कृष्ण चैतन्य हर राधा कृष्ण लेकर भूमि पर लोट पर होकर नंदन करते। उनके हृदय के समस्त भाव गीतों के बल बातें के रूप में प्रकट हुए। उनके हृदय के समस्त भाव गीतों में केवल बातें के रूप में प्रकट हुए। वे आज गौरिया वैष्णव समाज में प्रार्थना एवं प्रेम भक्ति चंडिका के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो उस प्रेम अवस्था में नरोत्तम ठाकुर जी जो लिखे है गाते थे, जैसे कि कहा गया उनके दिव्य प्रेम गंगा जी के जल में दुग्धवत मिल गया। इस प्रकार आश्चर्य उनके लीला संग्रह को देखकर सभी आश्चर्यचकित हुए। चारों ओर हरियर की बंधु थी। श्री रघुनंदन ठाकुर का परम अद्भुत चरित्र है। उनके रूप में विद्यालयों ने अपने करुणा का विस्तार पूरे विश्व में किया।
गोपियों में अपने खुद की इंद्रतृप्ति की
इच्छा कृष्ण को आनंद देने की होती है, इसी कारण वे उनसे मिलते हैं और उनके साथ भोग करती है। यत्तस्त्रांत चरणं गुहं स्थलेषु भीतस्वने प्रियदपि मयि कर्तसेषु तेनापि मतसि यत् व्यतक्रेण किं स्त्री कृपादिति भ्रमति गोपी ने कहा, हे कृष्ण, हम आपके कोमल चरण कमलों की बड़ी सावधानी से अपने कठोर स्तन पर रखती है। जब आप जंगल में विचरण करते हैं तो आपके कोमल चरण कमलों में कंकर पत्थर लगते हैं। हम डरती रहती है कि इससे आपको पीड़ा होती है, क्योंकि आप हमारे जीवन और आत्मा हैं। अब जब आपके चरण कमलों को पीड़ा पहुंचती है तो हमारा मन अत्यंत विचलित होता है। तो यहाँ पर जो चर्चा हो रहा है, हमारे रामचंद्र राय क्षेत्र में महाप्रभु से वार्तालाप हो रहा है, तो यह भगवान कृष्ण की प्रेम के विषय में चर्चा हो रहा है कि श्री गोपीजनों का जो प्रेम किस प्रकार उत्कृष्ट प्रेम था। इस चीज को जैसे अभी यहाँ पे श्लोक के अनुसार और प्रयाग के अनुसार जो चर्चा हो रहा है उसको समझना बहुत उच्च स्तर भक्ति के बहुत उच्च स्तर का जो है उच्च स्तर का लक्षण है। इसको श्री चैतन्य गोस्वामी भी इस चीज की चर्चा करते हैं। तो चैतन्य गोस्वामी साहब ने अपने ग्रंथ की कोई भी लिखा है कि लीलाओं का वर्णन किया और वहां पे वही लीलाओं का जो चर्चा चल रहा है, ये व्यक्ति तभी समझ पाएगा जब पूरी तरीके से इस संसार से जो मुक्ति अवस्था में जो व्यक्ति पहुंच जाते हैं वही लोग इसको किसी को समझ पाते हैं। अभी हमारा जो जनता मस्तिष्क है उसके माध्यम से हम राधा कृष्ण की प्रेम विलास को हम कभी समझ नहीं सकते। इसमें पूर्ण रूप से जो है आप केवल शब्दों को दोहरा सकते हैं, लेकिन वास्तविक साक्षरता होगा कि कृष्ण का प्रेम किस प्रकार के जो कृष्ण का प्रेम किस प्रकार कारण का प्रेम गोपियों का प्रेम किस प्रकार कृष्ण के प्रति है, ये अभी जो है हमारे समझ से बाहर की बात है। तो भगवान का जो गोपियों के साथ जो भगवान का प्रेम है एकदम उज्ज्वल उन्नत उज्ज्वल है। इसमें रंग मात्र भी किसी प्रकार भौतिक वासना इसमें है ही नहीं। लेकिन अच्छे अच्छे लोगों का जो इसमें दिमाग जो जकड़ जाता है और वो समझ नहीं पाते, अंत में यही दुर्गुण के समाधान समझ आता कि जो कृष्ण जो है एक काली पुरुष यही जैसा जो मोटा मोटी समझ आता। लेकिन जो है इसका जो शुद्ध भाव को समझना बड़ा बहुत ही जो है उच्च स्तर के भक्ति समझ परमहंस लोग ही इस चीज को समझ पाए। आगे कहा गया श्री गोपी भावावृत यहां लोग वेद धर्म लोग कृष्ण भवजय। यदि किसी के अंदर वो गोपी भाव का गोपी भाव में कोई कृष्ण के अंदर कृष्ण की सेवा करने किसके अंदर जो है अरे भावना होता है तो वो वैदिक धर्म को छोड़कर वेद के धर्म को छोड़कर वो कृष्ण का भजन करता है। ये बहुत है उस तरह की बात है जो इस तरह पहुंचे हुए वही लोग जो है इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारे माधवेंद्र पुरी जी जो है प्रार्थना करते हैं कि ये भक्ति कितने उच्च स्तर पहुंच चुके थे, ये लोग वास्तव में भगवान श्री कृष्ण समझ पाए। तो जब गोपी भाव में व्यक्ति भगवान की सेवा राम मार्ग में भक्ति की भगवान की सेवा करता है तो वो वैदिक धर्मों को भी जो है वैदिक धर्म से ऊपर हो जाता है। तो इसमें महादेव जी के जैसे प्रार्थना करते हैं कि हे संध्या वंदना भद्रमस्तु मंगल हो, आपका मंगल हो, इसके बाद आपकी अपनी सेवा नहीं कर सकता। नियमित रूप से मैं शाम के समय बैठकर दिन में तीन दिन बैठकर जब मैं संध्या वंदन नहीं कर सकता और स्नान स्नान भी मैं नहीं कर सकता, ये सब जो है सब राग मार के जो है जब राग मार के जब व्यक्ति इस प्रकार रहते हैं और सुबह सुबह जो है स्नान करो भी कैसे नहीं हो सकता। हे देवो मित्रो तर्पण विधि नाहम क्षमा क्षमता, हे देवता लोग, हे पितागण, वे आपको जो है प्रतिदिन तर्पण भी नहीं कर सकता। जैसे वैदिक नियम है हम मनुष्य के लिए प्रतिदिन देवताओं को तर्पण करना चाहिए और पितरों को तर्पण करना चाहिए, ये सब मनुष्य का कर्तव्य बनता है। तो क्योंकि जब पितरों को तर्पण प्रतिदिन हम उनको तर्पण करते हैं तो वो उनको प्राप्त होता है, उनको खाने के लिए तो आपको सदर्म मतलब उनको दो और देवताओं को सम्मान करना, उनको प्रणाम करना, सूर्य देव को प्रणाम करना, तो ये जो है मनुष्य के लिए कर्तव्य होता है। तो आगे माधव जी कहते हैं यत्र कांचन विषय में याद बगुल उत्तम कंस देशी, जब से जो है यदुकुल श्रेष्ठ जब कंस का शत्रु है श्री कृष्ण, जब से मैं उनका स्मरण करता हूँ और तब से जब मैं कुछ भी नहीं कर पाता मैं पूरा बदल गया। जब भी मैं कृष्ण स्मरण करता हूँ मैं सब कुछ भूल गया, सब कुछ बदल गया हूँ। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि ये करने से कृष्ण का स्मरण मात्र करने से सब कुछ जो है संध्या बंधन भी हो जाएगा, स्नान भी हो जाएगा और सबको तर्पण भी हो जाएगा, मैं यही समझ। इस प्रकार जो है ये महाभागवत ग्रंथ इस प्रकार से वैदिक नियमों से जो है वो परे हो जाते हैं और भगवान की इस प्रेम को समझने के लिए यमुनाचार्य जी कहते हैं भगवान का प्रेम को कौन समझ सकता है जो पूर्ण रूप से जो काम वासनाओं से मुक्त हो गया है, तो वही व्यक्ति जो भगवान का प्रेम को समझ सकता है। तो इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। फिर आज तक तैयारी था राधा लोको मार्गे तारे पते ते जनम से ही जन्म पाए पते ब्रजेंद्र मंत्र। जो व्यक्ति राधा रूप पाठ पर स्वतः स्फूर्त प्रेम से भगवान की पूजा करता है और वृंदावन जाता है उसे नंद महाराज के पुत्र ब्रजेंद्र नंदन की शरण प्राप्त होती है। तो भगवान की भक्ति जो प्राप्त होती है राम नाम के द्वारा तो भगवान को प्राप्ति करने के राम नाम जो विधि है जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य ऐसे गुरुवार जो है इसको सुनी और आपने अपने मर्जी के अनुसार इसको इस प्रयास में समझने का कोशिश कीजिए। कृष्ण की सेवा करने की कुल 64 विधियां हैं। स्वतः ही भोजन की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही भगवान के हित के लिए कार्य करने लगे तो लोग के हाँ ये जो उसकी भक्ति जो है उसको जो है ठीक बनने लगा। यानी क्या भगवान के रिश्ते कार्य जो भगवान की जो डिवोशिप है, भगवान की पूजा जो है, ये भगवान की पूजा करें और सोच रहा है क्या हम फंस गया, बड़े बहुत बड़े मुश्किल होगा, ये सोचने से क्या है अपराध ऐसे नियमों को पालन तो इस भौतिक जगत में किया जाता है। कौन सा नियम को? वैदिक नियमों को। जब तक कोई भौतिक स्तर पर होता है तब तक उसके लिए कुछ नियमों को पालन करना आवश्यक है, लेकिन कृष्ण का स्वतः स्फुट राधानंद प्रेम तो दिव्य होता है। लग्ने को ऐसा लगता है कि विधि ज्ञान का अतिक्रमण हो रहा है किंतु भक्त दिव्य पद पर स्थित होता है। ऐसी सेवा गुणातीत या निगुण कहलाती है क्योंकि वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा कलुषित नहीं होती। ब्रजे लोग परम पूर्ण भाव अद्वयाई ये ब्रजे भाव योग्य देह पाए कृष्ण पाए ब्रजे। इस मुक्त अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के पांच रसों में से किसी एक रस के द्वारा आकृष्ट होते हैं। वो सब उसी भाव से भगवान की सेवा करते रहने से गोलोक वृंदावन में कृष्ण की सेवा करने के लिए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जैसे हमारा रामाचार्य और चैतन्य महाप्रभु प्रसंग प्राप्त कर रहे हैं, जिसके बाद ही मुझे भक्ति आश्रम विष्णु महाराज भी बताया था, हम केवल भक्ति का नियमों को पालन करते रहे तो ये जो प्रसंग चल रहा है ये स्वतः ही जो है हृदय में प्रकट हो जाएगा। इसको एक्सटर्नली लेने के लिए और इसके लिए प्रयास करना मुश्किल है, समझने की आज हो सकता है गलती हो जाती है, इसलिए हम कुछ बोलना संभव नहीं है क्योंकि राग मार्ग में तो अभी हम लोग गए नहीं, ना कुछ मुझे कुछ बता रहा हूँ, अब कुछ बता हुआ भी कल्पना हो सकता है, इसीलिए अच्छा है कि हम लोग रोपाली कुशलता के लिए के लिए हम इसको इसमें कुछ अगर बताना चाहते हो सकते हैं, इसलिए कई पहले हमारे बड़े बड़े अध्यक्ष मोहनदास गुरु जी भी क्लास दिया करते थे, ये भी वही बताते हैं कि हम लोग जो नियम है जो टोटल जो नियम के तो पालन करते रहे स्वतः ही जो श्रवण करते करते स्वतः ही हर किसी का भगवान की सेवा में क्या उनका जो रोल है वो स्वतः ही उनको समझ आ जाएगा, स्वतः ही उसके लिए आकृष्ट होगा और वो उसी से वो भगवान से काम में जाएगा और भगवान की सेवा प्राप्त करेगा। तो इसकी बात आज तक क्या है जो संत जन उपनिषदों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे उनके ज्वलंत उदाहरण है। राधानंद प्रेम के मार्ग पर भगवान की पूजा करके उन्होंने नंद महाराज के पुत्र ब्रजेंद्र नंदन की चरण कमलों की प्राप्ति की। उपनिषदों में भी जो है ये राधानंद भक्ति करता गोपी के रूप में प्रकट हुए थे, उन्होंने भगवान की राधानु भक्ति करके उन्होंने भगवान ब्रजेंद्र नंदन के चरण कमलों को प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए संभव है, असंभव नहीं है, और जो हमारा जो परंपरा है इससे तो सब संभव है। तो देखो बात के क्या समस्या है, सब संभव है। वहां के सखाएं हैं, गोपियां हैं, बड़े करके अपने अपनी अनुरक्ति के अनुसार भगवान की प्रेम में सेवा में सदैव लगे रहते हैं। जो व्यक्ति भगवान की प्रत्येक सेवा करने के लिए भगवान लौटना चाहता है वो कृष्ण की और उनके सेवक तथा पिता अथवा माता के रूप में आकर्षित हो सकता है। इस जीवन में विशेष भाव में कृष्ण के निरंतर सेवा करते रहने से इस भौतिक जगत के त्यागने पर मनुष्य उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है जिसे वो उसी विशेष भाव में कृष्ण की सेवा कर सके। इस दास सखा माता पिता या माता के रूप में सेवा कर सकता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति मांगले भाव से कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो वो गोपियों के मार्गदर्शन में वैसे ही शरीर प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में सबसे जरूरत उदाहरण उन संत पुरुषों का है जिन्हें श्रुति कहा गया है और जो उचित के प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रुति का यह समझ कि कृष्ण की सेवा के बिना और गोपियों के पदचिन्हों का अनुसरण किए बिना भगवान में प्रवेश करने की तथा माधुरी प्रेम में कृष्ण की सेवा करने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए वे कृष्ण की स्वतः स्फूर्त राधारूप भक्ति करते थे और गोपियों के चरणचिन्हों का अनुसरण करते थे। श्रुतियां वैदिक मंत्र ये सब चिंता सेवा करते चिंतन में श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त किया। यहाँ पे आपका समाप्त होना है।